आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 9वां, उनका शीर्षक है भगवान का योद्धा अवतार परशुराम, श्लोक संख्या नंबर 41। कृपा करके मेरे पीछे उन शब्दों को दोहराइएगा। राज्ञो मूर्धाभीक्षितस्य वध ब्रह्मवतः गुरु तीर्थ संसेवया च अम्हा जहि अंग अच्युत चेतना। राज्ञो मूर्धा वीक्षितस्य राज्ञो मूर्धा वीक्षितस्य वधो ब्रह्मवधात् गुरु वधो ब्रह्मवधात् गुरु तीर्थ संसेवया चामहो तीर्थ संसेवया चामहो जहि अंगाच्युत चेतना जहि अंगाच्युत चेतना। राज्ञो मूर्धा वीक्षितस्य राज्ञो मूर्धा वीक्षितस्य वदो ब्रह्मवधात् गुरु वदो ब्रह्मवधात् गुरु तीर्थ संसेवया चामहो तीर्थ संसेवया चामहो जहि अंगच्युत चेतना जहि अंगच्युत चेतना।
Yeah.
शब्दार्थ इस प्रकार है, राज्य राजा का, मूर्धा भिक्षक जो सम्राट के नाम से विख्यात है, वद हत्या, ब्रह्मवत वदान ब्राह्मण की हत्या की अपेक्षा, गुरु अत्यंत कठोर, तीर्थ संसेवया तीर्थ स्थानों की पूजा करके च भी हम पाप कर्म जही धो डालो अंग हे पुत्र अच्युत चेतना पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीपति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। हे पुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है, किंतु यदि तुम कृष्ण भावना भावित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। तात्पर्य, जो पूर्णतः भगवान की शरण में चला जाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षिष्यामि। जिस क्षण से कोई श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देता है तो वह कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो मुक्त हो जाता है। फिर भी उदाहरण के रूप में जमदग्नि ने अपनी पुत्र परशुराम को तीर्थ स्थानों की पूजा करने की सलाह दी। चूंकि सामान्य व्यक्ति तुरंत ही भगवान को आत्मसमर्पण नहीं कर पाता अथवा उसे तीर्थ स्थान जाने की सलाह दी जाती है, जिससे वह साधु पुरुषों को खोजे और धीरे धीरे अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान का योद्धा अवतार परशुराम शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। होम ज्ञानेन तुमिरानन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्री पदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्कृते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवैष्णवकृपासिन्धुभयवश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पिछले कई दिनों से इसी विषयों पर चर्चा चल रहा है, जो कि किस प्रकार कार्तिक वीर अर्जुन ने उन्होंने जमदग्नि के कामधेनु गाय को चुरा लिया और चुरा कर उन्होंने अपने महल में लेकर गए। और जब जमदग्नि को ये जब खबर हुआ तो जमदग्नि वो स्वयं जब परशुराम को जब खबर हुआ तब परशुराम अपने अस्त्र से कार्तिकेय अर्जुन का पूरे हजार हाथ थे, वो सारे हजार हाथ को उन्होंने काट कर उनका अंत में वध कर दिया। तो यहाँ पर कार्तिकेय अर्जुन जो थे वो अपने शक्ति से इतने गर्वित हो चुके थे कि उन्होंने शिष्टाचार जो समाज में जो लोगों को किस प्रकार आदर सम्मान दिया जाता है इस विषयों को भूल चुके थे। तो अहंकार के कारण उन्होंने अपने विवेक बुद्धि को खो दिया और जिससे वो लोभी हुए और लोभी होकर उन्होंने वो जो एक गाय जो ब्राह्मण के पास था उसको उन्होंने चुराने का प्रयास किया। तो वैसे देखा जाता है कि क्षत्रियों को जो होता है उन्हें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, मगर यहाँ पर क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने दान देने के बजाय उनसे चुराने का प्रयास किया और वो चुरा कर अपने पास लेकर गए। तो ऐसे बताया जाता है कि दो भुजा वाले व्यक्ति के पास तो पहले ही घमंड होता है, तो जरा सोचिए कि हजार हाथ होगा तो कितना गर्वित होगा, हम विचार नहीं कर सकते इतने वो गर्वित हो चुके थे। और परशुराम उन्होंने उनके सारे गर्व का नाश किया और अंततगत्वा उन्हें हत्या कर वो जब वापस आए तो उन्होंने यथारूप जो जो हुआ उन्होंने अपने पिताजी को कह दिया। तो जमदग्नि सुनते ही उन्होंने कहा ये तुमने ठीक नहीं किया। हालांकि परशुराम वो एक यहाँ पर ब्राह्मण का रोल कर रहे हैं मगर उन्होंने क्षत्रिय के कार्यों को उन्होंने किया। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो कभी वध नहीं करते लेकिन बहुत इमरजेंसी केस में ऐसे किया जाता है। जैसे राजा वेण जो कि क्षत्रिय होने के नाते सबको संरक्षण प्रदान करने का उनका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए, मगर उन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मणों ने उनको कई शिक्षा दी, लेकिन ब्राह्मणों की सारी शिक्षा सुनने के बाद भी राजा वेण सुधरे नहीं तो ब्राह्मणों ने अपने मंत्र से उनका वध कर दिया। तो ऐसे समय पर ब्राह्मण भी वो भी वध करते हैं लेकिन कब, जब इमरजेंसी केस होगा तब। इसको कहते हैं इमरजेंसी वर्णाश्रम। तो इस इमरजेंसी वर्णाश्रम में यहां पर परशुराम जो कि ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के रोल को किए, और वैसे ही देखा जाता है विश्वामित्र मुनि जब असुरों का जब राक्षसों का जब बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा था जिसके कारण ब्राह्मण लोग यज्ञ हवन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो हालांकि विश्वामित्र मुनि सामर्थ्य थे वो सारे असुरों का वध करे लेकिन तत्पर भी उन्होंने उस कार्य को लिया नहीं, उन्होंने देखा जब क्षत्रिय है तो उनका पहला मदद लिया जाए। तो इस तरह उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के सहयोग से उन्होंने वो सारे असुरों का वध किया। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण जो होते हैं वो तब इस कार्य को लेते जब क्षत्रिय बंधु जब बन जाते, यानी कि क्षत्रिय अपने कर्तव्य को खो देता है तब ब्राह्मणों को इस कार्य पर उतरना पड़ता है। हालांकि परशुराम जो कि शक्तियावेश अवतार है तो हम उन्हें किसी वर्णाश्रम धर्म में नहीं लगा सकते, जो कि भगवान भगवत गीता में कहते चतुर वर्णया मया कृष्णम गुण कर्मा विभागतम तस्याम कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो भगवान ने ही ये चार वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं लेकिन तत्पर भी भगवान इस चार वर्णाश्रम धर्म में नहीं आते। तो वैसे जो परशुराम जिनको हम एक ही वर्ण में नहीं रख सकते लेकिन तत्पर भी यहाँ पर उनके पिता जमदग्नि ने कहा क्योंकि तुमने एक राजा का वध किया है तो तुम्हें प्रायश्चित निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि राजा जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और भगवान के प्रतिनिधि के प्रति मान करना या किसी भी प्रकार का अत्याचार करना उसके लिए पाप माना जाता है। तो इसलिए हे परशुराम तुमने एक राजा का वध कर तुमने पाप किया है, इसलिए अपने पाप को धुलाने के लिए तुम तीर्थ स्थानों पर जाओ, जब वहां पर पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाओगे तब पूरा पाप मिट जाएगा। तो हालांकि कृष्ण भावना भावित एक ही मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने सारे पाप को धुला सकता है। तो कृष्ण भावनामृत अगर यही एक मार्ग है तो तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है। और परशुराम तो इसमें पूरी तरह पारंगत थे, अपने सारे पाप को धुलाने लिए केवल कृष्ण भावनामृत होकर, लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार कहा, क्योंकि इससे एक शिक्षा है, जिससे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि एक सामान्य जन या एक साधारण व्यक्ति अगर उसे पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना है तो उसे तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करना है, जिस तीर्थ स्थानों में उनको साधुओं का संगति होगा, जिस साधुओं के संगति में वो अपने सारे पाप को धो सकता है। तो इसलिए कहा गया है एषाम तो अंतगतम पापम जनाराम पुण्य कर्मणा से द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जब तक व्यक्ति अपने जीवन के सारे पाप को नहीं धोता और उसके जीवन में जब तक उस भक्ति की जो पूंजी है जब तक उदय नहीं होती, तब तक वो व्यक्ति भगवान का भक्ति दृढ़ता पूर्वक नहीं कर सकता। जय श्री श्री राधा के हरे भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो वैसे भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करने के लिए उन्हें साधुओं की संगति की आवश्यकता है। चैतन्य चरितामृत में जहां पर बताया जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुखदायी स्थिति क्या है, तो रामानंद राय बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को, माम आराध्य दुख अर्थ कुटुंब आसक्त मानस सत्संग रहितो मर्त्य वृद्धा सेवा प्रतिच्युत। तो कहते हैं चार कारण बताते जो एक व्यक्ति के दुख की स्थिति है। तो क्या क्या है, तो कहते हैं सत्संग रहितो, तो सबसे पहला उसका दुख का पहला जो शुरुआत है सत्संग रहितो, वो भक्तों के संगति को छोड़ देता है। तो जब भक्तों की संगति को छोड़ देता है तो क्या होता है, अनाराध्य। तो भगवान की जो उपासना करने की जो अर्चना करने की जो सेवा का जो मौका है वो छूट जाता है, ये दूसरा। और जब भगवान की सेवा का अर्चना करने का जब भाव छूट जाता है या वो मौका छूट जाता है, तब तीसरा जो कष्ट होता है वो है कुटुंब आसक्त। और जब कुटुंब आसक्त होता है तो चौथा जो दुखदायी स्थिति है और वो है वृद्ध सेवा प्रतिच्युत, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों का या वैष्णवों की सेवा का जो सेवा का अवसर जो है वो उसके हाथ से निकल जाता है। और ये जो चार कारण है, जिस चार कारण से जीव इस संसार में दुख को भोगता है, और सबसे पहला शुरुआत है भक्तों की संगति को छोड़ना। इसलिए रामानंद राय आगे कहते हैं स्वजीवन अधिकम प्रतीयम श्री विष्णु जन संगत विच्छेदन क्षणम च अत्र न सुख अंश लभानवे। तो कहते स्वजीवन अधिकम प्रतीयम, एक व्यक्ति का सबसे प्रिय वस्तु क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए श्री विष्णु जन संगत। एकमात्र भक्तों की संगति का ही जो मौका है वो प्राप्त करना ही उसके जीवन का एक अमूल्य वस्तु होना चाहिए। विच्छेदन क्षणम च अत्र, एक क्षण के लिए भी अगर भक्तों का संगति है तो क्या कहते, न सुखम अंश लभानवे, उसके जीवन में थोड़ा भी उसके जीवन में सुख मिलना असंभव है या नहीं मिलेगा। तो वैसे भक्तों के संगति को जब व्यक्ति छोड़ता है तब उसके जीवन में दुर्गति शुरू होती है। इसलिए जो तीर्थ स्थानों में मुख्यतः भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में भक्तों के संगति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सुकृति को अर्जित कर कर वो सारे पाप कर्मों को अपने से दूर करें। तो जब ये जो विषय भोग की जो वासनाएं हैं वो भक्त जब अपने जीवन से त्यागता है, यानी कि पाप को त्यागता है, तब जाकर व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के विषय में उसके उसका जो दृढ़ता है वो स्थिर होता है, उसके उसका जो विचार है भगवान का भजन करने का वो स्थित होता है। केवल विषय भोगों को पहला परित्याग करने के बाद। तो इसलिए भक्तों के संगति में उसके अंदर विषय भोगों को त्यागने की जो क्षमता है बड़े आसानी से प्राप्त करता है। तो ऐसा जो भक्त जब अपने जीवन में सुकृति को अर्जित करता है और भक्तों के संगति में, तब जाकर वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर परशुराम को कहा गया है कि तुम तीर्थ स्थानों में भ्रमण के लिए जाइए। तो उससे शिक्षा क्या मिलता है कि किस प्रकार तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में क्रमशः भक्तों के संगति में या साधुओं के संगति में आते हुए उसे अपने जीवन के सुकृति को उदय करना है। इसलिए यहाँ तक कि गजेंद्र भी बताते हैं कि भगवान की भक्ति जो करना वो इतना बड़ा रुकावट है, और वो क्या है, असहाय वेग। वो जो वेग जो है जिसको नियंत्रित नहीं करने के कारण दुरंत पारम, वो जो दुरंत शक्तिया, वो उस वेग को संयमित न करने के कारण बहुत ही दुष्कर हो रहा है या बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इसलिए जब तक व्यक्ति का मन, जब तक वो विषय वस्तुओं से दूर नहीं होता, तब तक भगवान की भक्ति अग्रसर नहीं हो सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य के साथ जब जा रहे थे, तब उन्होंने देखा, उनके शिष्यगण ने देखा, एक बहुत बड़ा बंगला था, उस बंगले के ऊपर पूरा झुक कर एक पेड़ लगा हुआ था, तो बड़ा अच्छा दिख रहा था वो पेड़। तो उनके शिष्यगण ने कहा, प्रभुपाद पेड़ कितना सुंदर दिख रहा है। तो प्रभुपाद कहने लगे, हाँ ये पिछले जन्म में उसी बंगले का मालिक हो गया, अब वो पेड़ बन गया है। तो वो जो विषय वस्तु, जब मन जब किसी विषय वस्तु में आविष्ट हो जाता है, तो उसको दूसरा जो जन्म है उसके अनुसार ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया दुरंत शक्तिया। इसलिए बताते हैं, बहुत जन्म ताकिल भाग्य विषय छाड़िया है वैराग्य। जब तक अपने जीवन में बहुत जन्म जन्मांतर तक वो अगर जब तक सुकृति को इकट्ठा नहीं करता, तब तक विषयों का परित्याग करना ये बहुत मुश्किल है। तब जाकर वो जब अपने जीवन में जब पुण्य को अर्जित करेगा, तब जाकर वो विषयों को परित्याग करने के लिए सक्षम होगा। इसलिए जब तक भक्तों के संगति में व्यक्ति नहीं आता, तब तक सुकृति प्राप्त नहीं होगा। तो वैसे अनेक अनेक भक्तों का हम उदाहरण देखेंगे, या असुरों का उदाहरण भी देखेंगे, कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में सुकृति को अर्जित किया, और सुकृति को अर्जित कर कर ये भक्ति में प्रगति को प्राप्त किए। तो पहला है असुरों में उदाहरण, जैसे कि पुतना। पुतना ऐसी राक्षसी थी जिन्होंने अपने हृदय में ये धारणा कर लिया था कि मुझे कृष्ण को मारना है। लेकिन इतना होने के बाद भी जब पुतना जब अपना स्तनपान करा रही थी, तो कहते हैं पदभ्याम भक्ति रीति स्थभ्यम वंदाभ्याम लोक वंदित अंग यश्य समाग्रम्य भगवान अपि तत्थनम। वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो चरण कमल, वंदाभ्याम लोक वंदित, जो कि पूरा देवता गण तक उनके उपासना करते, उनकी आराधना करते, वैसे जो सामान्य व्यक्ति उन देवताओं की पूजा करते, जो देवतागण उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल पर निरंतर अपने मन को लगा के रखते हैं, अंग यश समाग्रम्य भगवान अपि तत्स्थनम, वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने हाथों से उन्होंने पुतना के अंग को ऐसे कसकर पकड़ा कि जिससे ये ऐसे ऐसे विचार या इस बात को हम सोच सकते हैं कि कैसे इस पूतना ने अपने जीवन में सुकृति या कौन सा पुण्य उन्होंने प्राप्त किया था कि उनकी यह दशा हुई। और ऐसे श्री संप्रदाय के एक आचार्य बताते हैं कि भगवान जब इस लोक से जब जा रहे थे, अपनी लीला को जब खत्म कर रहे थे, तब उस समय जरा नाम के जो शिकारी ने जो तीर मारे थे, तब उस तीर लगते ही उन्होंने माँ का नाम उच्चारण किया। तो जैसे ही माँ करके पुकारा तो तीन माता आ गई, एक है यशोदा मैया, दूसरा है देवकी माता और तीसरा है पुतना माता, और तीन माता वहां पर आ गई। तो इस इतना बड़ा जो कि भगवान कृष्ण ने उनको ऐसा स्थान दिया और इनको इस प्रकार का स्थान क्यों प्राप्त हुआ, मुख्यतः क्योंकि इन्होंने अपने पिछले जन्म में बलि महाराज की जो बहन होने के कारण इनको इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के संगति या भगवान की लीला में भाग लेने का उन्हें मौका प्राप्त हुआ, तो वैसे सुकृति को प्राप्त किए। दूसरा उदाहरण बताते कंस का। कंस जो था उन्होंने अनेक अनेक प्रकार के असुरों को भेजे थे वृंदावन में मारने के लिए। जब अरिष्टासुर का जब वध हो गया तो अरिष्टासुर का वध होने के बाद बताते हैं कि नरमुनि उनके पास में आते हैं। अरिष्टो निहित दैत्य कृष्ण अद्भुत कर्मणा कंसयात तथा भगवान नारद देव दर्शनम। तो जब अरिष्टासुर का जब वध हो गया तो उस कृष्ण के अद्भुत कर्मों को बताने के लिए नारद मुनि कंस के पास आए और कंस के पास आकर क्या बताते कि हे कंस, वो जो जो छोटा बालक जो दिख रहा है ना, वही कृष्ण है, वो उसी ने तुम्हारे यहाँ पर इस जेल में जन्म लिया था। मथुरा से उनके पिता वसुदेव ने लेकर चले गए, गोकुल में जाके छोड़ दिया, सब पूरी इतिहास बता दी। और ऐसे कृष्ण लीला सुनकर कंस इतने पुण्य को अर्जित कर दिया जिसके कारण कंस को कृष्ण का दर्शन का मौका प्राप्त हुआ और वो अंतिम दर्शन था। और ऐसे कंस को वैसी सुकृति प्राप्त हुई। फिर उदाहरण देते कालिया का। अब कालिया इतने बड़े पापी थे या इतना ईर्ष्यालु था, तो वैसा कालिया कस्यानुभावशेन देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारा यदवांछिया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम दृढ़ व्रता। तो वैसे कालिया जिन्होंने अपने जीवन में केवल मुंह से केवल जहरी उगला है, लेकिन कस्यानुभाव से न देव विद्महे, ऐसा कौन सा सद्भाग्य उन्होंने किया था। तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारा, तो नाग पत्नी कहती है कि ऐसा कौन सा मेरे पति ने सद्भाग्य किया है कि उन जो कि आपका चरण कमल उनके मस्तक पर पड़ रहा है। तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारा। और यदि वांछया श्री ललना चरत तपयो, ऐसा जो चरण कमल के रज को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी सुचिरम दृढ़ व्रता, वो दृढ़ता पूर्वक तपस्या में लगी है तो भी उसे प्राप्त नहीं हो रहा, जबकि मेरे पति कालिया को इसका लाभ हो गया। तो वैसे लाभ होने का जो कि मुख्यतः कारण क्या था, क्योंकि वो नाग पत्नी जो कि भक्तों के संगति में रहने के कारण उनको वैसा लाभ प्राप्त हुआ। तो ये चैतन्य चरितामृत में भी इस प्रकार एक वर्णन आता है, जो कि बहुत ही बड़े असुर जैसे थे मगर उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई, और वो थे जगाई मधाई। जगाई मधाई इतने बड़े असुर क्रियाओं से थे कि उन लोगों के पाप क्रियाओं को लिखते लिखते चित्र केतु और उनके सारे स्टाफगण थक गए थे, परेशान हो गए थे। लेकिन वैसे होने के बाद भी जगाई मधाई जो थे उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। तो क्या कहते हैं, अमी देखी लांभर तुम्हार रक्त पड़ा संगे सांगो पांग अस्त्र पार्षद सब संगे। कि जगाई मधाई ने उनका नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया, और सर फोड़ने के खून रक्त बहा दिया, लेकिन रक्त बहाने के बाद में उनको बदले में क्या मिला? कृष्ण प्रेम मिला। क्योंकि जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा करने के लिए मदाई को रोका, तो उससे उनको वैष्णव सेवा का अवसर हुआ और वो सुकृति के कारण उन्हें भक्ति मिला। और मदाई को नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? मदाई को ये कहा कि मेरी सारी सुकृति तुम्हें लग जाए। और तब जाकर मदाई को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जब ऐसे असुरों को भी जब सुकृति प्राप्त होता है तो उसे कृष्ण प्रेम मिलता है। अब दूसरे कैटेगरी के जैसे देखा जाता है जो अपने भक्ति मार्ग से विलग हो गया, जैसे कि भक्ति में लगा है लेकिन वो अपने मार्ग से च्युत हो चुका है, और च्युत विषय भोग के कारण, जैसे उदाहरण आता है अजामिल का। अजामिल अपने जीवन पहले बचपन में भक्ति किए थे, लेकिन भक्ति करते वक्त उसके जीवन में ऐसे मोड़ आई कि वो अपने भक्ति को खो दिया। जैसे अजामिल, जैसे कुंडल कृष्ण प्रभु बताते हैं, अजा यानी कि भगवान की शक्ति, जो माया, मिल यानी कि माया में जो मिल गया तो वह अजामिल। तो वैसे अजामिल माया में मिल गया, तो वो अजामिल की क्या दशा हुई? वो अजामिल अंतिम समय पे नारायण का उच्चारण किया और उन्हें भक्ति या उन्हें पुनः भक्ति करने का मौका प्राप्त हुआ। अब अजामिल की ऐसी दशा थी कि उन्होंने मरते वक्त नाम उच्चारण किया, दूसरा उन्होंने अपने पुत्रों को पुकारा, तीसरा कभी अपने जीवन में नियमों को पालन नहीं किया, चौथा कभी उन्होंने भगवान के स्तुति या भगवान के नाम की स्तुति को कभी सुना ही नहीं था। ये चार कारण थे, फिर भी उन्हें मोक्ष की गति प्राप्त हुई। अब इससे क्या शिक्षा मिलता है कि ऐसा नहीं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने मरते वक्त पुकारा तो उनकी यह दशा हुई, अगर कोई रोज जप करता है तो उनकी क्या दशा होगी? और इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने पुत्र को पुकारा था, अगर हम भगवान को संबोधित करके आगे पुकारेंगे तो क्या लाभ होगा? और इतना ही नहीं, उन्होंने तो कोई नियम ही नहीं पाला था, लेकिन अगर कोई नियम पालेगा तो क्या दशा होगी? और यहां तक कि उनको हरि नाम की महिमा भी नहीं पता था, तो अगर कोई हरि नाम की महिमा को अगर जानता है तो क्या हो? तो इस प्रकार अजामिल को वो सुकृति कहां से प्राप्त हुई? क्योंकि उनके वो जब अपने पाप में जीवन को बिता रहे थे, तब कुछ दो साधु उनके पास आए जिन्होंने उनके पुत्र का नाम नारायण करके रखा, और वो साधुओं की संगति के कारण उनको वो सुकृति प्राप्त हुआ, जिससे वो अपने जीवन में मोक्ष के मार्ग के लिए यानी कि भगवान की भक्ति के मार्ग के लिए अग्रसर हुए। अब दूसरे प्रकार के जो अपने भक्ति जो रास्ते से विलग हो जाते हैं, जैसे एक होता है सेंशुअली फॉल डाउन, दूसरा होता है फिलोसॉफिकली फॉल डाउन। तो जो दूसरा प्रकार का है, जैसे कि अपने सिद्धांत के बाहर है, तो जैसे सिद्धांत के बाहर होने वाले व्यक्ति का जैसे उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है, प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती जो कि पूरी तरह मायावादी थे और उनके 10,000 शिष्य थे, और ऐसा उनका पूरा एक गुरु के रूप में उसका ऐसा सत्ता चलता था, लेकिन फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु उनके पास जब आए तो उन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी वो जहां पर चरण धोते उस स्थान पर जाकर बैठे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं गए उनके पास, आपने प्रकाशानंद हाथ धरिया बसीला सब मधे सभा संगे। उन्होंने अपने हाथ से चैतन्य महाप्रभु को हाथ देकर उन्होंने अपने बाजू में लाकर बिठाया, और इतना करने मात्र से प्रकाशानंद सरस्वती को साधु सेवा का सुकृति प्राप्त हुआ। और जिस कारण से प्रकाशानंद सरस्वती जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जो वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार लिया, ऐसे एक दूसरा उदाहरण जैसे सार्वभौमा भट्टाचार्य। सार्वभौमा भट्टाचार्य भी पूरी तरह मायावादी थे, लेकिन उन्होंने भी क्योंकि बताते हैं चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ को कहते हैं कि हे गोपीनाथ, प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम संग है त जगन्नाथ कृपा है होयला सभा होयला भल मत। तो कहते हैं क्योंकि हे गोपीनाथ, क्योंकि तुम जगन्नाथ जी के भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे संगति के कारण सार्वभौमा भट्टाचार्य को भी जगन्नाथ जी की कृपा मिली। तो इस प्रकार सार्वभौमा भट्टाचार्य स्वयं कहते हैं गोपीनाथ को, कहते हैं कि तुम्ही महाभागवत अमित तर्क अंधे, प्रभु कृपा कैला मोरे तुम्हारे संबंधी। सार्वभौमा भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं तर्क करने में पूरी तरह अंधा हूं, क्योंकि सार्वभौमा भट्टाचार्य और गोपीनाथ का बहुत तर्क चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है क्या नहीं, ये जानने के लिए। और उस तर्क में सार्वभौमा भट्टाचार्य स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। अब यहां पर वो कह रहे कि नहीं, मैं तर्क से अंधा हूं, मगर तुम जो कह रहे वो वास्तविक में सही है। क्यों? क्योंकि मुझ पर यह जगन्नाथ जी की कृपा इसलिए हुई क्योंकि मेरा संबंध आपके साथ में है। और इस तरह वो साधुओं के संबंधी में या साधुओं के संगति या साधुओं का एक उनको संगति प्राप्त होने के कारण यहाँ पर सार्वभौमा भट्टाचार्य को कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। श्रील प्रभुपाद जब अपने शिष्यों के साथ जब अमृतसर में आए, तो वहां पर अमृतसर में मायावादी का बहुत बोलबाला चल रहा। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को कहा, जाओ तुम जाके प्रवचन दो, इन लोगों के सामने मैं नहीं बात करूंगा। तो गुरुदास गए और गुरुदास प्रवचन करने लगे और क्या कहने लगे, ये मायावादी लोग जो कहते सब एक है, कैसे एक है? क्या मल और रसगुल्ला एक है? क्या मल को और रसगुल्ला को एक कह सकते हैं? तो बार बार लेक्चर में यही कह रहा था। तो बाकी लोग कुछ लोग आकर प्रभुपाद को कहने लगे, प्रभुपाद गुरुदास बता रहे, उदाहरण दे रहे मल और रसगुल्ला का, तो ये क्या उदाहरण है? तो प्रभुपाद कहने लगे, हाँ मेरे शिष्य कंडा एक ग्राफिक उदाहरण देते, तो चिंता मत करो, वो मायावादी सन्यासी के साथ मैं निपट लूंगा। सब मायावादी सन्यासी बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, क्या उदाहरण है ये, कुछ और उदाहरण क्यों दे रहे। तो फिर बाद में सब मायावादी के साथ चर्चा होने के बाद प्रभुपाद पूछते गुरुदास को, गुरुदास अच्छा तुमने कौन सा उदाहरण दिया था? मल और रसगुल्ला, स्टूल एंड रसगुल्ला, हाँ वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण था। और ऐसे प्रभुपाद इन मायावादी के साथ इस प्रकार डील करते थे। एक बार एक मायावादी आया और कहने लगे, स्वामी जी आपने हर जगह पर भगवत गीता में हर जगह पर केवल कृष्ण लिखा है, दूसरा अध्याय उसमें कृष्ण कृष्ण लिखा है, छठा अध्याय जो कि ध्यान योग है उसके अंदर भी कृष्ण भावनामृत लिखा है, और इतना ही नहीं 12वां अध्याय में तो पूरा भर दिया, और 18वां अध्याय जो कि मोक्ष है उसमें भी तो आपने कृष्ण कृष्ण करके लिखा है। तो प्रभुपाद बोले, और कहां लिखा है? अच्छा और यहां पर भी लिखा है 9वें अध्याय में। और इतना सब कहने के बाद वो जब चले गए तो शिष्यगण ने पूछा, प्रभुपाद आप तो हमेशा मायावादी के ऊपर तो एकदम आग बबूले हो जाते, नरसिंह की तरह हो जाते, अभी तो प्रहलाद जैसे इतने शांत कैसे थे? तो प्रभुपाद कहने लगे, तुमने देखा नहीं वो इतने समय पर कृष्ण कृष्ण कितने बार बोला, और मैं केवल उसके मुझसे कृष्ण कृष्ण बुलवा रहा था जिससे उनको सुकृति प्राप्त हो। कुछ मायावादी लोग आए, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और वो अपना पैम्पलेट लेकर आए और उन्होंने पूरा पैम्पलेट बांट दिया हर एक व्यक्ति को, और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। तो प्रभुपाद को किसी ने कहा, प्रभुपाद ये मायावादी का पैम्पलेट बांट। प्रभुपाद बोले, ठीक है रेंदो। पूरा बांटने के बाद फिर प्रभुपाद ने बोला, अच्छा आप लोगों के पास जो कागज मिला उसके ऊपर आप प्रसाद ले लेना। तो वैसे प्रभुपाद मायावादी को भी सेवा में लगा देते ताकि उसको सुकृति प्राप्त हो, जिससे वो फिलोसॉफिकली सही दिशा पर आ जाए। अब कुछ ऐसे भी उदाहरण है जिन जैसे कि मासूम, जो इनोसेंट, जैसे कि ध्रुव महाराज, जिनको सुकृति प्राप्त हुआ, और सुकृति प्राप्त हुआ नारद मुनि की कृपा से। तो नारद मुनि एक विशेष प्रकार के प्रचारक है। जैसे बताते हैं IYF जो शुरू करने वाले जो प्रचारक जो है हमारे नारद मुनि है, लाइफ मेंबरशिप कांग्रीगेशनल प्रीचिंग जो कि IYF जैसे दक्ष प्रजापति को उन्होंने जाके प्रचार किया, और कांग्रीगेशनल प्रीचिंग नारद मुनि कैसे चित्रकेतु उनके सारे परिवार को जाकर उन्होंने उपदेश दिया, और वरिष्ठ भक्तों को उन्होंने प्रचार किया। जैसे जब प्रचेता श्लोक जब रिटायर हो गए थे तब उनको जाके प्रवचन दिया, और जैसे जो कि लाइफ मेंबर कल्टीवेशन करने के लिए नारद मुनि गए प्राचीन वरिष्ठ के पास, और वही नारद मुनि जो कि प्रिजनर मिनिस्टर के रूप में गए, और वो कौन थे, वाल्मीकि को उन्होंने प्रचार किया, और वही नारद मुनि BBT में भी गए प्रचार करने जो कि वेद व्यास जी को। तो ऐसे हर दिशा पर नारद मुनि ने प्रचार किया, और यहाँ पर ध्रुव महाराज को उन्होंने सुकृति प्रदान किया। जब ध्रुव महाराज जब आए तब उस समय नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना हस्त कमल रखा, तब वो अनाघ हो गए, निष्पाप हो गए। तो जब माथे पर किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति अपना सुकृति उसे प्रदान कर रहा है। तो वैसा नारद मुनि जब अपने हाथ को ध्रुव महाराज के सर पे रखे तो उन्होंने अपना सुकृति उनको दे दिए, और जिससे सुकृति के कारण ध्रुव महाराज उस नारद मुनि के साधु संगति के बल के कारण ध्रुव महाराज अपने भक्ति भजन में दृढ़ हुए या सक्षम या सफलता को प्राप्त किया। तो इस प्रकार एक मासूमता के रूप में ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है, जिसके कारण उनकी माँ को भी लाभ प्राप्त हुआ। अब कुछ ऐसे भक्तगण है जो कि पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा को साधु संगति प्राप्त होकर उनका भी जीवन में सफलता प्राप्त हुआ है, जैसे कि परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मुझे ऐसा मौका क्यों प्राप्त हुआ कि आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहते हैं, अपिते भगवान प्रीत कृष्ण पांडु शुद्ध प्रिया, क्योंकि यह सौभाग्य सुखदेव गोस्वामी इतना महाभागवत मेरे सामने इसलिए आकर बैठे हैं क्योंकि अपिते भगवान प्रीत ते, यानी कि जितने भी मेरे जो पांडु पुत्र जितने भी हैं, मेरे पिता दादा या इस प्रकार उन लोगों के कृपा के द्वारा वैसा मुझे उन लोगों, क्योंकि भगवान के प्रीति या भगवान के प्रिय होने के कारण मुझे ऐसा मौका प्राप्त हुआ कि आप मेरे सामने आकर कुछ उपदेश दे रहे हैं। ऐसे ही मैत्री मुनि की भी ऐसे ही गति हुई, जैसे कि मैत्री मुनि जो कि ज्ञानी माने जाते हैं, मगर वो मैत्री मुनि जब उद्धव जी के संगति में आकर जब उन्होंने उद्धव गीत सुना तो मैत्री मुनि जो कि ज्ञानी से शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया। उस स्थान पर जब भगवान कृष्ण अंतिम में जब उन्होंने उद्धव गीत दिया, और इस तरह सत्यव्रत मुनि उन्होंने भी जब मत्स्य भगवान मत्स्य के रूप में एकदम छोटे के रूप में जब जन्म लिए थे तो उनकी सेवा करते गए और जिस सेवा के कारण सत्यव्रत मुनि को इतना पुण्य प्राप्त हुआ जिससे सत्यव्रत मुनि वो आगे जाकर भगवान की भक्ति को पूरी तरह या शुद्ध भक्ति को पूरी तरह उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो वैसा जब व्यक्ति पूरी तरह जब अपने जीवन में सुकृति को प्राप्त करते हैं तब व्यक्ति वो अपने जीवन में भगवान की भक्ति को पूरी तरह दृढ़ता पूर्वक करते हैं। जैसे दशम स्कंद में जहाँ पर वर्णन आता है जब याजिक पत्नी उस समय यज्ञ करने वाले जितने ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत सारे पकवान बनवाया था अपनी पत्नियों के द्वारा स्वर्ग के देवताओं इंद्र को अर्पण करने के लिए। मगर वहां पर यह संदेश मिला, ग्वाल बाल ने आकर उनकी उन्होंने पहले आकर उन ब्राह्मणों को कहा कि कृष्ण को भूख लगाए, उनके मित्रगण को भूख लगाए, तो आप कुछ दीजिए। तो उन्होंने भगा दिया ब्राह्मणों ने। तब अब की बार उन लोग जब दोबारा आए मांगने के लिए, तो मांगे उनसे नहीं, उनकी पत्नी से। तो उनकी पत्नी से जब मांगे, तो उनकी पत्नी बिना सोचे समझे वो सीधे पकवान को उठाकर लेकर चलने लगे, जबकि उनके पतिगण रोक रहे फिर भी नहीं रुके। ऐसे बताया जाता है, निषिद्ध माना पत्नी भ्राति भी बंधु भी दीर्घ श्रुता दीर्घ आश्रय। उनको कई प्रकार से रोका, लेकिन तत्पर भी चतुर्विधम बहु अन्नम अदघ भजनम। उन्होंने जो चार प्रकार के जो अनेक अनेक प्रकार के जो अन्न थे, वो सब सामग्री लेकर चल दिए। तो वो चल दिए, उनको कई लोग ने रोका, उनके भातृ भी बंधु भी सब लोग ने रोका, लेकिन नहीं रुके। क्यों, क्या कारण था? तो कहते हैं दीर्घ श्रुता धृता आश्रय, क्योंकि जब उन लोग उनके पास आते थे, कोई सब्जी बेचने आता था, कोई फल बेचने आता था, तो उस समय वो जब आते थे तो उन लोग कृष्ण कथा करते थे कि अभी कृष्ण ने किस प्रकार का कार्य किया, कृष्ण की सारी लीला बोलते थे। और वो लीला सुनते सुनते यहां पर इन पत्नियों का इतना पुण्य इनको प्राप्त हुआ, जिसके कारण इनके अंदर ऐसे ऐसे भजन करने की ऐसी या कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षण उत्पन्न हो गई कि उनके सारे परिवार स्वजनों को भी बड़े आसानी से छोड़कर निकल गए। तो वैसे वो जो जब व्यक्ति अपने जीवन में उस पुण्य को प्राप्त करता है, तो कैसे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके, इसलिए श्री प्रभुपाद भी अंत में लिखते हैं यहाँ पर कि उस तीर्थ स्थान जाने की सलाह दी जाती है जिससे वह साधु पुरुषों को खोजे और धीरे धीरे अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। तो इस तरह वो अपने जीवन में साधु पुरुषों के संगति में आकर वो अपने सारे पाप क्रियाओं से मुक्त होकर अपने जीवन में पुण्य को उदय कर भजनते माम दृढ़व्रता, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। आपको उत्तर ही पता होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पुण्य पुण्य सुकृति और भक्ति, पुण्य सुकृति और भक्ति। अच्छा, इस तीनों का अलग अलग क्या अर्थ है इनका? तो कुंडल कृष्ण प्रभु, इनके अब मैं कुछ उत्तर दे रहा हूं, तो कुछ अगर टूटी हो गया तो आप जरा बताइएगा। पुण्य, पुण्य यानी कि वो क्रिया जो कि भौतिक जीवन में हम कुछ क्रिया करते हैं, जैसे दान देना या असल में दान देना ये वगैरह, इसको कहते हैं पुण्य। तो वो पुण्य से व्यक्ति स्वर्ग जाकर विषय भोग करता है, लेकिन क्षीण पुण्य मृत्युम लोकम विशन्ति, तो वहां से वो पुण्य कम होता है, घट जाता है। अब दूसरा है सुकृति। सुकृति क्या है? वो सुकृति जो कि भक्त और भगवान की सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त होता है अनजाने में, उसको सुकृति जो कि भक्ति उन्मुख सुकृति कहते हैं। और जो पुण्य जो होता है वो भोग उन्मुख सुकृति है, और ये क्या है? भक्ति उन्मुख सुकृति, जिससे व्यक्ति को भक्ति करने का लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा है भक्ति। भक्ति यानी कि वो जो सुकृति करने का जो पूरा निष्कर्ष क्या है, भक्ति है यानी कि भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा। भक्ति मतलब वो है जो कि भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा। तो उस समय व्यक्ति पूरी तरह अनुकूल रूप में या पूरी तरह शुद्ध चेतना से वो करता है। तो जैसे जितने भी ब्रजवासी या जितने भी भगवान के ग्वाल बाल है, उन लोग पूरी तरह भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो अभी साधक भक्त जो कर रहा है, जो दिखाई दे रहा भक्ति कर रहा है, लेकिन वास्तविक में सुकृति को अर्जित कर रहा है। जिस सुकृति से उसे वो भक्ति प्राप्त हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। वन वाले प्रभु हमारे कुंडल कृष्ण प्रभु। अच्छा एक लास्ट प्रश्न, अभी टाइम है। धृतराष्ट्र के विषय में बताया जाता है कि धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में सफलता को तो प्राप्त किया, मोक्ष को तो प्राप्त किया, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने जब संजय को एक विदुर जी को एक खबर मिला कि धृतराष्ट्र ने अपने घर को छोड़कर अब मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, तो वो खुश भी हुए, दुखी भी हुए। खुश इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अंतिम समय पर उन्होंने सारे विषय भोग को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन दुखी इसलिए हुए क्योंकि उन्हें भक्ति प्राप्त नहीं हुआ। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वैष्णव अपराध कर दिए थे। बहुत सारे वैष्णव अपराध करने के कारण उनको वो भक्ति प्राप्त नहीं हुआ। अब हिरण्यकशिपु को अगर देखा जाए, दो प्रकार हम उत्तर दे सकते हैं। एक बहिरंग अंतरंग उत्तर तो यह है कि वो भगवान के पार्षद थे और भगवान के साथ दुश्मनी करने के लिए उनका एकमात्र हेतु था। और बहिरंग उत्तर के हिसाब से देखा जाए लोक शिक्षा से कि उन्होंने प्रहलाद महाराज के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उनके अंदर इतना इतना भगवान से इतना उनके अंदर मायावाद सिद्धांत घुस चुका था कि वो अपने आप को ही भगवान मानता था। तो वैसे विचार से वो हिरण्यकश्यपु कभी भक्ति को स्वीकार नहीं। अगर कोई हाँ तो लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि ना मैं भक्तिया प्रणश्यति, कि मेरा भक्त भले ही हो, तो भक्त जो होता है वो कभी गिरता नहीं है। उसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़े समय के लिए इंटरवल ले लिया है। बीच वन ने हाँ, तो इसके लिए रूप गोस्वामी के निर्देश के अनुसार अगर वो भक्ति करेगा तो कभी नहीं गिरेगा। जैसे रूप गोस्वामी बताते उपदेश अमृत में, हत्यार प्रयास इसके प्रजल्पन ये माग्रह, तो उस हिसाब से अगर वो रहेगा तो उसका कभी भक्ति से पतन नहीं हो सकता। नहीं हाँ, वही मुख्यतः वैष्णव अपराधी है जिससे व्यक्ति अपने मार्ग को त्याग देता है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की।